भूमिका। मीरा को समझना बहुत ही मुश्किल है। एक ओर वसंत रैदास की शिष्या हैं और उनके आध्यात्मिक अनुभव में निराकार रूप व्याप्त है, दूसरी ओर वह सगुण कृष्ण भक्ति की साकार प्रतिमा है। तमिल साधिका आंडाल से मीरा की तुलना की गई है, परंतु आंडाल सगुण रूप में ही उलझी रहती है, जबकि मीरा के गिरधर नागर सूली ऊपर सुन्न गगन में मीरा के लिए सेज बिछाते हैं। मीरा के काव्य में विछोह की तड़पन ही ज्यादा है, मिलन के सुख का वर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम है। आंडाल के दिव्य विवाह को पारिवारिक स्वीकृति प्राप्त है, पर मीरा का दिव्य प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है। शायद इसीलिए आंडाल के बिछोह में उतनी तीव्रता नहीं है जितनी तीव्रता मीरा के बिछोह में है। मीरा गुजरात के नरसिंह मेहता और ब्रज के सूरदास की काव्य परंपराओं की अंतर्वर्ती भी हैं, समवर्ती भी हैं, क्योंकि एक ओर उनके काव्य में बाह्य आचार और बाह्य सामाजिक स्तर भेदों के विरुद्ध विद्रोह है, जो गुजरात के वैष्णव भक्ति आंदोलन की अपनी विशेषता है। दूसरी ओर उनका काव्य अलौकिक सौंदर्य से आलोकित है, एक विश्वमोहन सौंदर्य से वह आविद्य है, और यही वह सूरदास के सन्निकट है। प्रायः सगुण भक्ति कविता के साथ रहस्यानुभूति का संबंध लोग नहीं जोड़ते हैं, परंतु मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति का रंग गहरा है। कहीं कहीं तो गिरधर या सवालिया के स्थान पर राम ला देने से ही लगेगा कि यह कबीर का अनुभव है। मीरा के काव्य में मोर मुकुट पीताम्बर आदि के चित्रमय वर्णन उतना महत्व नहीं रखते जितना कि मोर मुकुट वाले की लगन महत्व रखती है। इन सतही विसंगतियों के कारण मीरा के काव्य की थाह पाना कुछ मुश्किल लगता है। आचार्य रनाडे ने पाथवेज टू रियलाइजेशन ऑफ गॉड नामक पुस्तक में मीरा की रहस्यानुभूति पर अच्छा प्रकाश डाला है। उन्होंने माना है कि सांवल रूप के साथ यह तादात्म्य आत्मा की काली रात के साथ तादात्म्य है। रहस्यानुभूति के निविड़तम क्षण में कहीं कोई रूप नहीं रह जाता, कहीं कोई रंध्र नहीं रह जाता, सब एक सघन आकांक्षा के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसा होना ही मरजीवा की स्थिति प्राप्त करना है। मीरा जब यह बयान करती हैं कि या हृदय मनस्या सांवरो मारे ऋणीदन आवा चौमास्यारी बावड़ी ज्याको नीरणा पावा हरि निर्झर अमृत झरया मारी प्यास बुझावा रूप सुरंगा सांवरी मुख निरखण जावा मीरा व्याकुल विरहणी अपनी कर ल्यावा। तो वह जिस अनुभव की स्थिति में है वह एक ओर निरंतर प्यास की बेचैनी है, हृदय में श्याम रस सिंधु लहरा रहा है, उस पर उससे तृप्त नहीं है, उससे सम्मिलन नहीं है। प्यास बुझाने वाला अमृत क्षण जब आता है तो हर समुद्र समुद्र न रहकर अमृत रस बिंदु बन जाते हैं, और तब मीरा अपनी कर पाती हैं, उन्हें अपने में आत्मसात कर पाती हैं। यह रहस्यानुभूति विराट के सूक्ष्म में प्रविष्ट होने की रसानुभूति है, इसीलिए लौकिक सामाजिक संदर्भ में भी यह सार्थक है। मीरा ऊपर से देखने में समाज से बाहर दिखती हैं, पर वे समाज को एक करने वाली रसधारा में डूबी हुई हैं। उनके भीतर समाज की वास्तविक प्राणसत्ता समा जाती है। एक विश्लेषण विद्रोह परक भी किया जा सकता है कि मीरा सामंतवादी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए गिरधर भक्ति का संकल्प लेकर रणवास के बाहर निकल आई हैं। एक प्रकार से एक विशाल जनांदोलन में बहुत बड़ा जोखिम उठाकर कूद पड़ी हैं। यह जोखिम है सामाजिक प्रतिष्ठा खोने का, स्त्रीत्व की मान्य धारणा के अनुसार सीमित दायरे वाली नैतिकता से हटने का परिणाम भोगने का, पर यह विश्लेषण अधूरा है। जब तक संकल्प के प्रयोजन को रेखांकित न किया जाए मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह ही साधन है साध्य नहीं। इन दोनों का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति जो समस्त दुविधाओं द्वैतों और भेदों से ऊपर उठा दे, सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित कर दे। दोनों का साध्य प्राप्ति की गहरी बेचैनी है, इसीलिए जितने भी अवरोधक कारण हो सकते हैं उन्हें तोड़कर उनके आगे निकल जाने का उत्साह भी उतना अधिक है। मीरा और कबीर में केवल एक अंतर है, कबीर की दीक्षा क्रियायोग हठ योग में हुई है, इसीलिए उनकी काव्य भाषा के ऊपर शरीर के आभ्यंतर अनुशासन का बड़ा दबाव है। उनका बाह्य संसार भीतर के हीरे की ज्योति से आलोकित है, भीतर के कमल से आमोदित है, जबकि मीरा की दीक्षा प्रेम योग में हुई है। इसलिए उनका बाह्य संसार और उनका आभ्यंतर संसार दोनों एक दूसरे को उलसाते रहते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब सांवलिया भीतर के दर्द की श्यामलता बन जाते हैं, कब भीतर के दर्द की श्यामलता या आत्मा की काली रात ही सांवली सूरत बनकर थिरकने लगती है। मीरा को गुजरात के वैष्णव कवियों की तरह एकांत रूप से न निर्गुण भक्ति की कवियत्री कहा जा सकता है, न सगुण भक्ति धारा की। वे दोनों हैं, पर चूंक उनका झुकाव एक मूर्त लीलावितान में अपने को स्थापित करने की ओर अधिक है, इसीलिए उन्हें सगुण भक्ति धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। वस्तुतः हिंदी भक्ति काव्य धारा के इतिहास में मीरा और कुछ हद तक सूर्य सेतु का काम करते हैं। ये दोनों साकार निराकार के मिलन की क्षितिज रेखा बनाते हैं। मीरा के जोगी पदों में किसी आकार के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसी उपस्थिति के लिए बेचैनी है, और तब ऐसी प्रतीति होती है कि वह स्थिति इस लोक के अनुभव से परे है। कई तो जोगी जग में नाही कैर बिसारी मोई, काय करूं कित जाऊरी सजनी नैण गुमायो रोई। अथवा उसने भुला दिया है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, रोते रोते मैंने नैना गंवा दिए हैं। नैन तो खोजने के लिए अनेक दिशाओं में ले जाते हैं, बाह्य दृष्टि लाचार हो गई है, गोचर रूपों में उसका साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए चित्त की विशुद्धता और बढ़ती जाती है। अनुभव की यह परिणति ही तुम बिन तलफत प्राण के द्वारा विराट तन्मयता की स्थिति ला देती है। कभी कभी लोग मीरा के इन पदों में किसी लौकिक संदर्भ की छाया देखते हैं या नाथपंथ की छाप देखते हैं। हो सकता है कि लौकिक पति और अलौकिक पति श्री कृष्ण इस अनुभव में एक हो गए हों, पर मीरा के पदों की शब्द योजना में भौतिक संसार और उसका सौंदर्य तो छलकता मिलता है। कहीं भी संसार और इसके सौंदर्य के प्रति विषयाशक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई भी पद इसका प्रमाण नहीं देता कि लौकिक विषय सुख का कोई आकर्षण या उसकी कोई स्मृति चाहे उन्नीत रूप में ही क्यों न हो मीरा को भेदती हो। इसके ठीक विपरीत मीरा का प्रेम शुद्ध आत्मदान है, रूपाशक्ति से सीधे प्रेमाशक्ति में प्रवेश कम होता है। कामाशक्ति की गंध भी मीरा में नहीं मिलती। कबरी ठाढ़ी पंथ बिहारा अपने भवन खड़ी, अटक्या प्राण संवारो प्यारो जीवन मूर जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोक कहियां बिगड़ी। देखते देखते तो मीरा बिक जाती है और लोक बाह्य होकर विराट लोक की आदेश्वरी बन जाती है। इसलिए मीरा की पदावली में मान नहीं है, मन में प्रिय को केवल रिझाने की चाह है। मैं गिरधर के घर जाऊं गिरधर मारो संचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। रैण पड़े तब ही उठ जाऊं भोर भय उठ आऊं। रैण दिना वाके संग खेलूं ज्यों त्यों वाहि लुभाऊं। जो पहिराव सोई पहिरूं जोई दय सो खाऊं। जहां बिठावै तितही बैठूं बेचे तो बिक जाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी उण बिड़ पल न रहाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। इस आत्मदान में पतिव्रत का आदर्श प्रतिबिंबित माना जा सकता है, पर क्या लौकिक प्रेम की पवित्रता स्वयं ही इस परमानुभूति की प्रतिबिंबित छाया नहीं है? क्या मीरा की पदावली का स्पष्ट अभिप्राय यही नहीं है कि वास्तविक अनन्यता बस एक से होती है, दूसरी अनन्यताएं उससे छोटी हैं। अनेक पदों में जहर के प्याले की चर्चा है, इसकी पुनरावृत्ति एक ही बात की ओर इशारा करती है, दुनिया का जहर मीरा को बड़ा मीठा लगा है। लौकिक ऐश्वर्य का तिरस्कार मीरा की मधुर्यानुभूति में बहुत उपकारक है। सांप का शालिग्राम में परिवर्तित होना, मृत्युशैया का फूल सेज में परिवर्तित होना जैसे अभिप्राय विधान रूपी इसी रूपांतर पर बल देते हैं। कब और कैसे यह छोटा राग द्वेष का कड़वा संसार बहुत ही मधुर हो जाता है, यही बतलाना मीरा के काव्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसी प्रकार जोगी या रावल में नाथपंथ की छाया देखने वाली बहुत बात भी बहुत कुछ सतह पर ही समीचीन लगती है। पदावली के सूक्ष्म विश्लेषण में कहीं भी योग की शब्दावली पर आधृत सादृश्य विधान नहीं मिलता, इसलिए जोगी का सीधा अर्थ उसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ अधिक सटीक लगता है। जोगी अर्थात जो प्रेम योग में जुड़ गया और इसे साधने का मंत्र लेकर चला गया, या दूसरे शब्दों में कहें समस्त अनुभव पर छा गया। जोगी की प्रतीक्षा, जोगी का ध्यान, जोगी के लिए आकुलता, सब यही द्योतित करते हैं कि कहीं यदि कोई अस्तित्व है तो वह जोगी है, यदि कोई जीवन की सार्थकता है तो जोगी है। जोगी निस्संग विश्वात्मा ही है, इसीलिए जोगिया से प्रीत किया दुख होई, प्रीत कियो सुख ना मोरी, सजनी जोगी मीत न कोई, रात दिवस कल ना ही परत है, तुम मिलियो बिन मोई, ऐसी मूरत या जंग जग माही, फेरी न देखी सोई, वीरा के प्रभु कबरे मिलोगे, मिलिया आनंद होई। ऐसे जोगी से प्रीति जोड़ना दुख के लिए ही है, क्योंकि वह किसी का मित्र नहीं है, वह समस्त मित्रताओं का, समस्त छोटे संबंधों का दुश्मन है, उस जैसा कहीं रूप नहीं देखा। आदि से अंत तक मीरा के सुधे प्रेम की ही अभिव्यक्ति मिलती है। आराध्य जरूर बांके हैं, त्रिभंगी हैं, ऐसा लगता है जैसे कड़ी आँच में कठोर और टेढ़ा चित्र सीधा हो गया है। मीरा के काव्य की भाषा इसीलिए बड़ी तरल है, उसमें निष्प्रयास गेयता है। मीरा की रहस्यानुभूति को दूर रखकर भी काव्य सौंदर्य का मूल्यांकन किया जा सकता है, पर तब उस काव्य में मोर मुकुट पीताम्बर जैसे विशेषणों की पुनरावृत्ति की साभिप्रायता कुछ धूमिल हो जाएगी। इन विशेषणों के पर्यायों के चक्कर में न पड़कर इन्हें भी यदि मीरा ने दोहराया है तो सिर्फ इसलिए जो तिल तिल नया अनुभव उन्हें हो रहा है, उसमें एक धारावाहिता जिन विशिष्ट रूप गुणों के कारण है, उसे बनाए रखने के लिए उनके वाचक विशेषणों को बनाए रखना काव्य के लिए साभिप्राय होता है। मीरा का प्रत्येक अनुभव अलग होते हुए भी एकोन्मुख है और उसे एक ही प्रतीति इन बाह्य रूप संभारों से होती है, यद्यपि वह स्वयं श्यामल है, समस्त रंगतों को आत्मसात करने वाला। मीरा की यह अनन्यता ही मीरा की नैतिक मूल्यता की कसौटी है। इस ऊंची नैतिकता से प्रेरित होकर ही सीधी सच्ची भावना पर मीरा बल देती है। इस नैतिकता के भूमि पर रहने वाला व्यक्ति सबसे पहले झूठ, आडंबर, ढोंग, अभिमान और द्वेष का परित्याग करता है। इसीलिए मीरा के लिए धरा सांवरों ध्यान चित्त उजलों करा, सील घूंघरा बांध तोस निरंता करा। सांवले का ध्यान चित्त को उजला करता है और शील का घुंघरू बांध कर तोष का नृत्य करने के लिए विवश करता है। वे बाह्य आडंबर से अधिक आभ्यंतर संकल्प में विश्वास करती है, कराती है। परंतु जिस तरह कबीर तीर्थ और काषाय वस्त्र की खिल्ली उड़ाते हैं, वैसा मीरा नहीं करती। वह वृंदावन की रज में अपने मोहन के लीला रस का स्पर्श पाती है, इसलिए वृंदावन छोड़कर जाना नहीं चाहती। या ब्रज में कुछ देखियो रे टोना, मीरा की लोक मर्यादा बस इतनी दूर तक है, जहाँ तक लोग श्याममय होने के कारण अपने व्यवहार में सीधे सच्चे हैं, प्रेम भाव वाले हैं, वहाँ तक वे सभी ग्राह्य ही नहीं पूज्य भी हैं। मीरा के लिए अहिरणी, भीलणी और सुदामा इतने समीप हैं कि उनमें सिधाई और सच्चाई है, विराट सत्ता के आगे अपनी अकिंचनता का बोध है। मीरा का भक्ति काव्य इन दृष्टियों से यद्यपि अलग अलग विशेषताओं में भले ही अपूर्व न लगे, पर उनके अपूर्व संयोग के रूप में हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है, और इसका नया मूल्यांकन भक्ति काव्य को नए मानवीय चौखटे में स्थापित करके इसको अधिक रसस्वाद्य बनाएगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। विद्यानिवास मिश्र।